संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़। 24 दिसंबर 2021 के इस अंक में सुनिए, तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। कई देशों में वैक्सीन की बूस्टर खुराक दिए जाने पर जोर। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह किया, टीकाकरण में विषमता से महामारी लंबा खींचने का खतरा। लीबिया में टाले गए चुनाव, यूएन महासचिव की अपील, जनता की आकांक्षाओं का सम्मान हो। अफगानिस्तान में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। और यमन में 80 लाख लोगों के लिए खाद्य सहायता में कटौती होने की आशंका। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। COVID-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक या बूस्टर डोज अगर देशों में सभी वयस्कों को व्यापक पैमाने पर दी जाती है तो इससे टीकाकरण में विषमता गहराने और वैश्विक महामारी के लंबा खिंच जाने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी देश बूस्टर खुराक के जरिए वैश्विक महामारी से बाहर नहीं आ सकता है। दुनिया भर में बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। अब तक 110 देशों में इसके मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस वजह से कुछ देशों में वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगाए जाने में तेजी आई है। फिलहाल सभी वैक्सीन खुराकों का करीब 20% बूस्टर या अतिरिक्त खुराकों के तौर पर दी जा रही है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने वैक्सीन वितरण में विषमता पर चिंता जताई।
While some countries are now rolling out blanket booster programs, only half of WHO's member states have been able to reach the target of vaccinating 40% of their populations by the end of the year.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि कुछ देशों में अंधाधुंध ढंग से वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दिए जाने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्व में आधी संख्या में देश ही इस वर्ष के अंत तक अपनी 40% आबादी का टीकाकरण में सफल हो पाए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो हालात पैदा हुए हैं उससे वैक्सीन आपूर्ति उन देशों में मुड़ने की आशंका जताई गई है जहां पहले से ही टीकाकरण कवरेज ऊंचे स्तर पर है। जरूरतमंद देशों में टीकों का ना पहुंच पाना वायरस के लिए फैलने और अपना रूप और प्रकार बदलने का अवसर होगा। यूएन एजेंसी ने ध्यान दिलाया है कि अस्पताल में भर्ती होने या मौत होने का जोखिम उन लोगों के लिए है जिनका अभी टीकाकरण नहीं हो पाया है, न कि बूस्टर खुराक ना पाने वाले लोगों के लिए। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष 35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और हर सप्ताह 50,000 से अधिक लोगों की जान जा रही है। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नोवैक्सोविड नामक वैक्सीन के आपात प्रयोग को मंजूरी दे दी गई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी से स्वीकृति पाने वाली ये 10वीं वैक्सीन है जिसकी 2 खुराक ली जानी होंगी। लीबिया में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कानूनी मुश्किलों और उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में दर्ज की गई अपीलों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और संसदीय चुनाव टालने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने बताया कि तकनीकी तैयारियों के बावजूद राजनीतिक रोडमैप के तहत 24 दिसंबर को राष्ट्रीय चुनाव करा पाना संभव नहीं है। यूएन महासचिव ने मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लाखों लीबियाई नागरिकों की सराहना की है और उनकी इच्छाओं का आदर किए जाने का आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
निर्वाचन कानून और उम्मीदवारों की योग्यताओं के संबंध में की गई अपीलों के कारण कुछ मुश्किलें पेश आई हैं। इसके मद्देनजर आयोग ने पहले दौर के राष्ट्रपति चुनाव को 30 दिनों के भीतर कराए जाने के लिए नई तारीख की घोषणा करने का आग्रह किया है। यूएन प्रमुख ने राष्ट्रपति व संसदीय चुनाव के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हुए उन 28 लाख नागरिकों की सराहना भी की है जिन्होंने मतदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लीबिया में आमजन की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना अनिवार्य है। अक्टूबर 2020 में लीबिया की सत्ता के लिए संघर्षरत परस्पर विरोधी धड़ों में एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति हुई थी। इसके तहत एक राजनीतिक रोडमैप और अंतरिम सरकार के साथ साथ देश में राष्ट्रपति व संसदीय चुनाव के लिए रास्ता तैयार किया गया। लीबिया पर यूएन महासचिव की विशेष सलाहकार स्टेफनी विलियम्स ने ध्यान दिलाया है कि राजनीतिक संकट का समाधान ढूंढने और सतत स्थिरता के नजरिए से राष्ट्रपति व संसदीय चुनाव उपयुक्त माहौल में कराए जाने होंगे। उन्होंने कहा कि लीबिया में बड़ी संख्या में नागरिक अपने भविष्य को दिशा देने के लिए मतदान में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। समावेशी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों को समस्या के बजाय समाधान का हिस्सा बनाया जाना होगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को सर्वमत से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके बाद जरूरतमंद अफगान नागरिकों तक बुनियादी सहायता पहुंचाई जा सकेगी। वर्ष 2015 में तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे, मगर बुधवार को पारित प्रस्ताव में इन पाबंदियों में मानवीय सहायता और बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद लोगों की राहत आवश्यकताओं को पूरा करना संभव होगा और सहायता धनराशि को तालिबान के हाथों में जाने से रोका जा सकेगा। अगस्त महीने में देश की सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद पश्चिमी देशों ने अरबों डॉलर की रकम को जब्त कर लिया था। मौजूदा प्रतिबंधों के कारण उन बुनियादी ढांचों के संचालन में रुकावटें पेश आ रही हैं जो कि स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को निशाना न बनाए जाने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। बताया गया है कि खुर्रम परवेज ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। और विवरण के साथ अंशु शर्मा।
स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के साथ जानकारी साझा करने के लिए परवेज को बदले की भावना से की गई कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नवंबर महीने में खुर्रम परवेज को साजिश रचने और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि गिरफ्तारी के एक महीने बाद भी खुर्रम परवेज को उनकी आज़ादी से वंचित रखा गया है। विशेष रिपोर्टर ने अतीत में ऐसी घटनाओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से खुर्रम परवेज को तत्काल रिहा किए जाने और आज़ादी व सुरक्षा के उनके अधिकार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि परवेज को दिल्ली के रोहिणी जेल परिसर में रखा गया है जहाँ क्षमता से अधिक कैदी हैं और स्वच्छता का अभाव है। इसके मद्देनजर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तात्कालिक रूप से जोखिम है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के फैलाव के दौरान।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बुधवार को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यमन में 1,30,00,000 लोगों के लिए खाद्य सहायता जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। इन हालात में अगले साल जनवरी से 80,00,000 लोगों को कम मात्रा में ही राशन वितरित किया जा सकेगा। पूरा राशन उन्हीं 50,00,000 लोगों को मुहैया कराया जाएगा जिनके अकाल के गर्त में धंसने की आशंका प्रबल है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यमन में बड़ी संख्या में परिवार अपने गुजारे के लिए यूएन एजेंसी की खाद्य सहायता पर निर्भर है। पिछले 3 महीनों से देश में लगभग 50% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष यमन में अधिकांश इलाकों में खाद्य कीमतों में दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है जिसकी वजह से अनेक परिवार अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अगले वर्ष जनवरी महीने से खाद्य सहायता में कटौती होने की स्थिति में परिवारों को यूएन एजेंसी की ओर से निर्धारित न्यूनतम दैनिक राशन का लगभग आधा ही प्राप्त हो पाएगा। सहायता धनराशि के अभाव में अन्य कटौतियां भी होने की आशंका जताई गई है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत से लोग खाद्य सहायता कार्यक्रमों के दायरे से पूरी तरह बाहर रह सकते हैं। कुपोषण की समस्या का उपचार और स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन पर भी असर पड़ सकता है। यमन में 1,62,00,000 लोग यानी देश में आधी से अधिक आबादी भरपेट भोजन ना मिल पाने से गंभीर रूप से पीड़ित है। 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 23,00,000 बच्चों पर कुपोषण का जोखिम मंडरा रहा है। यमन में विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य भंडार खतरनाक ढंग से कम स्तर पर पहुंच गए हैं और यह ऐसे समय में हो रहा है जब मानवीय संकटों से निपटने के लिए दुनिया भर में बजट बेहद सीमित होता जा रहा है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।